आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। भारतीय सेना ने कश्मीर में चलाया ऑपरेशन महादेव, मुठभेड़ में मारे गए पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकवादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को वाराणसी में 2,248 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की तैयारियों की समीक्षा। प्रदेश सरकार ने कल देर शाम 23 IAS अधिकारियों का किया तबादला, 10 जिलों के जिला अधिकारी बदले। और प्रदेश भर में आज श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है नाग पंचमी का त्योहार। अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को कल सेना ने मार गिराया। ऑपरेशन महादेव के तहत कल सुबह श्रीनगर के हरवान के लिडवास क्षेत्र में सेना और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में इन आतंकियों को मारा गया। इस बीच लोकसभा में कल ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की कार्रवाई को सशक्त, सफल और निर्णायक सैन्य कार्रवाई बताया। अपने वक्तव्य में उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि संघर्ष के पहले और उसके दौरान जो भी राजनीतिक तथा सैन्य लक्ष्य तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे।
भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अगस्त को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। इससे पहले उन्होंने वाराणसी और आजमगढ़ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ भी विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उन्होंने देर शाम दुर्गा कुंड स्थित स्वामी करपात्री जी महाराज के तपोस्थली का दौरा किया। स्वामी करपात्री जी के 118वें प्राकट्य उत्सव पर मुख्यमंत्री ने धर्म संघ पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री आज सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के बनौली गांव स्थित प्रधानमंत्री की जनसभा स्थल का दौरा कर सुरक्षा, पार्किंग स्थल, पेयजल और यातायात सहित सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वह आज प्रयागराज जिले का भी दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के बारे में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र के 51वें दौरे पर वाराणसी को 2,248 करोड़ की लागत वाली 54 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे।
इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगभग 15 प्रोजेक्ट 630 करोड़ का इसका लोकार्पण किया जाएगा और लगभग 38 प्रोजेक्ट जो 1,618 करोड़ का उसका शिलान्यास किया जाएगा। इस प्रकार कुल 2,248 करोड़ का प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास की जाएगी। अब की बार ये बनौली जो क्षेत्र में ये प्रस्तावित है उस क्षेत्र में इसके पहले कोई जनसभा नहीं हुई है और जो सुरक्षा से संबंधित और अन्य जो तैयारियां हैं वो सारी तैयारियां जिला प्रशासन लगभग पूरा कर चुके हैं और वहाँ जो और व्यवस्थाएं होनी चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से, आने वाले लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी दृष्टि से वो सारी तैयारियां कर चुके हैं।
अवैध धर्मांतरण मामले में बलरामपुर जिले से गिरफ्तार मुख्य आरोपित जमालुद्दीन उर्फ छांगुर को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कल विशेष अदालत में पेश किया। ईडी ने जमालुद्दीन से पूछताछ के लिए कोर्ट से 14 दिन के कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की थी। कल मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने 5 दिन की कस्टडी रिमांड स्वीकार कर ली। नवोदय विद्यालयों में 9वीं और 11वीं कक्षा में सत्र 2026-27 में सीधे प्रवेश के लिए 23 सितंबर 2025 तक आवेदन किए जा सकते हैं। प्रवेश के लिए सिलेक्शन टेस्ट 7 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने कल देर शाम 10 जिलाधिकारी सहित 23 आईएएस अफसरों का स्थानांतरण कर दिया। इस स्थानांतरण सूची के अनुसार अयोध्या के मंडलायुक्त और सीतापुर के मुख्य विकास अधिकारी भी बदल गए हैं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
प्रदेश सरकार की ओर से जारी आईएएस अफसरों की स्थानांतरण सूची के अनुसार गोरखपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, कासगंज, कानपुर देहात, बहराइच, ललितपुर, मिर्जापुर और गोंडा के जिलाधिकारी बदल गए हैं। दीपक मीणा को गोरखपुर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा प्रयागराज के जिलाधिकारी पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। कासगंज की जिलाधिकारी मेधा रूपम को गौतम बुद्ध नगर का जिलाधिकारी बना दिया गया है। प्रणय सिंह को कासगंज, कपिल सिंह को कानपुर देहात, अक्षय त्रिपाठी को बहराइच, अमनदीप डोली को ललितपुर, पवन कुमार गंगवार को मिर्जापुर, प्रियंका निरंजन को गोंडा और रविंद्र कुमार मंदर को गाजियाबाद का जिलाधिकारी बनाया गया है। राजेश कुमार अयोध्या के नए मंडलायुक्त होंगे। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
नाग पंचमी का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जौनपुर के गौरीशंकर और त्रिलोचन महादेव मंदिर में नाग पंचमी की पूजा के लिए भक्तों की कतार तड़के से ही लग गई। अन्य जिलों में भी श्रद्धालु भगवान शंकर और नाग देवता की पूजा के लिए शिव मंदिरों और शिवालयों में पहुंचने शुरू हो गए हैं। उधर इस पर्व के उपलक्ष्य में गोरखपुर में कल से 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद विभिन्न भार वर्ग में प्रदेश भर से आए पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। आज प्रतियोगिता का समापन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। वह विजेता पहलवानों को पुरस्कृत भी करेंगे। रक्षा लेखा महानियंत्रक डॉ मयंक शर्मा ने कल प्रयागराज के प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा पेंशन कार्यालय में रक्षा पेंशन पर आधारित गैलरी धरोहर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए डॉ शर्मा ने कहा कि प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक द्वारा ऑटोमेटेड प्रणाली स्पर्श के माध्यम से पिछले एक वर्ष में 4 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया।
बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे थे, लगभग 6.5 लाख, जो पहले अलग अलग स्थानों से पेंशन लेते थे, पर ये कहा गया कि उनकी पेंशन को भी स्पर्श में ले आए। तो 32 लाख में से बाकी सबकी पेंशन बिल्कुल करेक्ट थी, उनमें कुछ डेटा में प्रॉब्लम थी और वो डेटा को हमने स्पर्श में लाकर उसको ठीक करने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। और मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि उस अभियान के तहत लगभग 5 लाख पेंशनर्स का डेटा हम बहुत कम समय में, लगभग 4-5 महीने में करेक्ट कर पाए हैं और बाकी भी बहुत जल्दी कर लेंगे।
लखनऊ सहित प्रदेश के लगभग सभी पूर्वी जिलों में बीते 48 घंटे से रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला जारी है। लगातार वर्षा के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कुछ स्थानों पर जलजमाव होने के चलते जनजीवन प्रभावित भी हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार वर्षा का यह क्रम रुक रुक कर अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रह सकता है। विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी जिलों में अगले 24 घंटे में भारी वर्षा होने और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन प्रदेश में नेशनल यूथ गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी के लिए दावेदारी प्रस्तुत करेगा। यह फैसला एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में लिया गया। बैठक में उप मुख्यमंत्री और एसोसिएशन के चेयरमैन ब्रजेश पाठक और प्रसार भारती के अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. नवनीत सहगल भी मौजूद रहे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सेना ने कश्मीर में चलाया ऑपरेशन महादेव, मुठभेड़ में मारे गए पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकवादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को वाराणसी में 2248 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की तैयारियों की समीक्षा। प्रदेश सरकार ने कल देर शाम 23 आईएएस अधिकारियों का किया तबादला, 10 जिलों के जिला अधिकारी बदले। और प्रदेश भर में आज श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है नाग पंचमी का त्यौहार। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।